13वें अध्याय में पुरुष या जीवात्मा किस तरह से प्रकृति अर्थात बाह्य शक्ति जो है बहिरंग शक्ति उसमें फंसता है अपनी भोग भोगने की इच्छा के कारण, इसका वर्णन आता है। मैं भोग करना चाहता हूं इसके कारण मैं फंस जाता हूं। और चैप्टर 14 जो है वो ये बताता है कि किस तरह से भौतिक शक्ति जो है तीन गुणों के माध्यम से शरीर आत्मा को बांध देती है। टेक्स्ट नंबर 22 जो है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक उसका ट्रांसलेशन पढ़िए।
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है।
पुरुष प्रकृति स्थो ही हो गया ट्रांसलेशन। हाँ, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूमते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसि। इसी को अभी 14 अध्याय एक्सपांड करके बताता है। 14 जो चैप्टर है टेक्स्ट नंबर 14 इसी को एक्सपांड करके बताता है। अर्थात 14वां जो अध्याय है उसका शुरुआत का जो कनेक्शन है 13वें और 14 के बीच का जो ब्रिज है वो ये है। यहां से फिर वो 14वां शुरू हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी 5 भाग है। So we can start the breakdown of the chapter. और चैप्टर का टाइटल क्या है? मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुण। तो पहले जो 4 श्लोक है वो है जीवात्मा का मुक्ति और बद्ध अवस्था, लिबरेशन एंड कंडीशनिंग ऑफ लिविंग एंटिटीज। पहले 4 श्लोक बद्ध अवस्था। सेकंड है 5 से 9 वो है शुद्ध आत्मा को गुण बांध देते हैं। गुण अर्थात प्रकृति के तीन गुण, द मोड्स बाइंड द सुपर सोल द प्योर सोल। आत्मा तो शुद्ध है लेकिन प्रकृति के तीन गुण उसको बांध देते हैं। फिर तीसरा है 10 से 13 किसी एक गुण की महानता या उसका प्रभाव को पहचानना। महानता का सुप्रीमसी हम बताना चाहते। तीन गुणों में कई बार एक प्रतीक को पर्टिकुलर को एक गुण जो है वो सबसे अधिक सुप्रीम हो जाता है, उसको पहचानना। फिर 14 से 18 में उस गुणों के अंतर्गत कार्य करना और मृत्यु प्राप्त करना। करना और मरना, मर जाना, मृत्यु प्राप्त करना। एंड द लास्ट सेक्शन वो 8 श्लोकों का है या 9 श्लोकों का, 19 से 27 गुणों का वो पार कर जाना। हाँ, गुणों को पर होना या गुणों को लाओ ट्रांसेंड करना। I don't know what transcend is। की मेमोरी श्लोक की मेमोरी श्लोक का लिस्ट आपको नहीं मिला है के एम बी कोई ज्यादा है इसमें आपको मिलेगा वो आएगा सर चार नंबर कौन सा स्टोर मोटे संभव हाँ भी अच्छा है आपके लिए हाँ तो इट्स गुड कम है तो नहीं आप लोग का
नहीं यार इतनी तो लंबी नहीं हो रहा है
नहीं आप सबका इच्छा है तो बढ़ा देंगे
मैं
भी
तो
सॉरी मैं रात को आई वॉज वेरी लेट एंड टूडे होल डे आई वॉज लाइक टायरिंग सो टेक्स्ट नंबर वन के पहले जो हमने वो बात किया उसको उसके साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं कि 13वां अध्याय जो था वो हमारा बद्ध होने का आत्मा का बद्ध होने का परिणाम बता रहा था और क्षेत्र में हम फंस जाते हैं और 14वां अध्याय जो है वो किस तरह से जीवात्मा सीमित है और नियमित है किसके अपने क्षेत्र के अंदर और उसके जो शैकल है जो चेन है वो है तीन गुण समझ लो कि एक बड़ा मैदान है बाहर लेकिन एक पेड़ है उस पेड़ के पास एक हाथी खड़ा है लेकिन हाथी का पांव जो है वो बांध दिया गया है तो यद्यपि हाथी उधर है कुछ करेगा नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो बंधा हुआ है इस तरह से हमारी जो शक्ल है वो भी बंधी हुई है हमारी सब सब हाथ पांव से बंधे हुए है बांधने वाले जो रस्सियां है वो कौन है प्रकृति के तीन गुण और फिर भगवान अंत में बताएंगे कि किस तरह से इस गुणों की शैकल से निकला जा सकता है सो बंदी भगवान हुआ से यहाँ पर
भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है
देखो अभी यहाँ पर पुनः भूय ऐसा शब्द का उपयोग हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रश्न होगा कि बेस्ट ऑफ ऑल कैसे हो गया अब हमें इसको बेस्ट ऑफ ऑल कैसे मान लेगा आई मीन लॉजिकली तो सेट नहीं हो रहा है ये परम ज्ञान परम भूय ये भूय ज्ञान कहाँ से आएगा तो बलदेव विद्याभूषण इस विषय में कहते हैं कि अगेन आई विल स्पीक अ काइंड ऑफ नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव स्पोकन सो फार इस विषय में अभी तक मैंने कभी भगवद गीता में कुछ बोला नहीं है इसलिए ये सबसे अलग है इसलिए भगवान बता रहे कि मैं आपको तुम्हें सब कुछ समथिंग न्यू नाउ आई एम गोइंग टू टॉक ये विशेष करके प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर ये चर्चा है प्रकृति और जीव के विषय में जब तक आप तीन गुणों को नहीं जानते तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये जीव जो है प्रकृति के अंदर कैसे स्थिर है जब तक आप तीन गुणों को नहीं समझते वो नहीं समझ पाएंगे ये बिल्कुल कैसा है कि दूध में से दही को निकालने वाला उस प्रकार का है कि आप इसको समझोगे तभी आप इसको समझ पाओगे तो इस बड़े बड़े सेज जो है उन लोगों ने इसको बताया तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं और वहां से पढ़िए फ्रॉम द सेवेंथ चैप्टर टू द एंड ऑफ ट्वेल्थ चैप्टर
13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका सेवेंथ चैप्टर
हाँ सेवन टू थर्टीन
सातवां लाइन
सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं और भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तेरहवें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, ये किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह मानते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूरे वर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का लेटर में भी प्रभुपाद इसके विषय में लिखा है कि अगर कभी भक्तों का जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है और ज्ञानियों का जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है वो दोनों में काफी अंतर होता है। भक्तों के फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुष्क नहीं होता है, ज्ञानियों का शुष्क होता है, उसका कोई परिणाम नहीं आता है। उन लोग का डिस्कशन का कोई परिणाम नहीं होता, यूजलेस। वो लोग वो मेंढक होते हैं ना, उसका जो आवाज आती है ना ड्राउ 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 मेंढक का, तो वो क्या करता है, सांप को बोलता है कि तुम इधर उधर ढूंढो मत, मैं तो इधर ही बैठा हूं, तुम मेरे पास आकर मुझे खा लो। तो ये ज्ञानी लोग जो बोलते हैं वो इसी प्रकार का होता है। लेकिन भक्त लोग फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं और प्रॉपर से फॉर एग्जाम्पल आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जल का स्वाद मैं हूं भगवान कहते हैं। तो अभी ये बात हुई तो अभी नाउ इसके ऊपर अगर आप डिस्कशन करते हो किस तरह से शास्त्र के आधार से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अर्थात स्पेकुलेशन, प्रभुपाद कहते हैं कि स्पेकुलेशन अर्थात तर्क जो है उसका स्वागत है। ऐसा नहीं कि तर्क बेकार होते हैं, हमेशा तर्क होने चाहिए लेकिन वो वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल होने चाहिए और जो कृष्ण दर्शन जो कृष्ण बता रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए, तब उस तर्क का भी स्थान है, अन्यथा वो तर्क यूजलेस है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्रभुपाद सेज दिस थिंग इन वन ऑफ द लेटर्स। द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्रेन और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम कृष्णस पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी, सो देयर इज नो लिमिट to that understanding because Krishna is unlimited. And even though it can be said that the devotees who knows Krishna knows everything, still the philosophical process never stops and the devotee continues to increase his knowledge even though he knows everything. Try to understand this point. It's a very good question. Prabhupada says this. Prabhupada, इसलिए इससे कोई बुराई नहीं है अगर आप तत्वज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास करते हो तो. There is no problem in that. So, text number 2, पढ़िए। दूसरा जो श्लोक है वो उसी का महिमा बता रहे, जिस इस अध्याय के ज्ञान की महिमा बता रहे।
इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रगति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है।
तो ये जो ज्ञान प्राप्त करता है वो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण किस तरह से कार्य करते हैं और वो फिर वो तीन गुण से पर हो जाता है, ब्रह्म भूया कल्पते, वो इससे मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है या फिर वो भगवान की स्थिति भगवान जैसी प्रकृति प्राप्त करता है। और प्रलय और सर्जन में वो फंसता नहीं, जैसे सर्जन के समय उसका उसको आना नहीं पड़ता इधर और प्रलय के समय पर उसका नाश नहीं होता, प्रलय हो जाएगा फिर वो मरेगा नहीं, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बल्लभ विद्या भूषण जी कह रहे हैं इसके साथ साथ कि ये ज्ञान आध्यात्मिक गुरु के चरणों की पूजा करने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु के चरण की पूजा करने से ये चीज प्राप्त, जैसे एक बार जाने आए थे ना बीच में, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया था प्रभुपाद शेट्टी से, प्रभुपाद जी का बताया कि आप कोई भी कार्य करते हो उसको फिनिशिंग टच देना पड़ता है। कोई भी कार्य करते हो तो उसका जो फिनिशिंग टच होता है, जब तक वो फिनिश नहीं होता है तब तक फिनिशिंग टच, वो फिनिशिंग टच जो होता है ना वो गुरु की कृपा का एक बूंद होता है, वो जब डालेंगे उसके ऊपर तभी आपका काम सफल होगा। जैसे भगवान का जो विग्रह है, ये विग्रह तभी कंप्लीट माना जाता है जब उस विग्रह की आंख बन जाती है, तभी वो विग्रह कंप्लीट माना जाता है। और जैसे आंख बन जाती है फिर वो कंप्लीट हुआ विग्रह। तो उसी तरह से गुरु की कृपा का एक बूंद अगर जब मिलता है तभी वो व्यक्ति सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। सो इस तरह से ज्ञान का महिमा बताने के पश्चात कृष्ण अभी प्रकृति, जीवात्मा और अपने आप स्वयं का, इस तीनों के बीच का जो संबंध है वो फिर से बता रहे हैं।
तो इसमें जो लिखा है कि जैसे जो भगवान के धाम जाते हैं वो पुनः नहीं आते, मगर जो नहीं जाते हैं तो जितने भी करोड़ों करोड़ों जीव है जो बद्ध है तो वो प्रलय के समय उनका नाश हो जाएगा और फिर वो वही अवस्था में रहेंगे, और फिर जब सर्जन होगा तब वही लोग वही जीव बाहर आएंगे।
यस,
उसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि कौन सा जीव, जैसे आपने बहुत पहले एक बार बताया लेक्चर में कि वर्षा के रूप में वो आएगा और जहाँ पे,
हाँ, लेकिन जैसे ये तो कैसा होता है
कि कौन सा शरीर प्राप्त होगा उसको।
हाँ, तो इट इज समथिंग लाइक, कैसे होगा कि समझ लो कि कोई मूवी चल रही है आज, और मूवी आज रात को थोड़ा लेट हो गया आपको, तो आप क्या क्या उसको पॉज कर दिया, और पॉज कर दिया और पॉज किया, रात को सो गए, दूसरे दिन पूरा चल गया, फिर वापस आपको जहां से पॉज किया था वहीं से प्लेस किया। तो ये प्रलय के समय पर यही घटना होती है, वहीं पर गेम अटक जाती है आपकी, तो वहां पर आप जो जिस अवस्था में है वो वही उसी कर्म का पूरा हिसाब किताब लेकर के, वो सब बैलेंस शीट उसका उसके साथ लेकर के अपने अपने घर बस सो जाओ निद्रावश। और जब अगर समझ लो कि आज के दिन में मेरा हिसाब किताब में 2 लाख रुपए क्रेडिट था और 4 लाख रुपए डेबिट था, तो वही हिसाब लेकर मैं कल आऊंगा वापिस, फिर वहां से अपना काम वापिस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी हो, सर्जन के दौरान पूर्व जन्म के जितने भी कर्म है उसी के आधार पर आपको नया शरीर मिल जाता है। लेकिन एक चीज अवश्य होती है कि प्रलय के समय पर सबके शरीर को नष्ट किया जाता है, सबको सुसुप्त अवस्था बना दी जाती है, लेकिन ये प्रलय अलग अलग होते हैं। प्रलय अलग अलग होते हैं, जैसे एक पृथ्वी पर आते हैं प्रलय, तो एक केवल पृथ्वी तक सीमित होते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रलय आते रहते हैं, ऐसा महाप्रलय नहीं होता। जैसे हम पृथ्वी में है तो एक पृथ्वी का एक अंश में प्रलय आया, दूसरे अंश में नहीं आया, फिर कुछ आधे पृथ्वी पर प्रलय आया, आधे पृथ्वी पर नहीं आया, फिर कोई पूरी पृथ्वी का प्रलय आता है, फिर एक कैटेगरी को पूरा प्रलय करता है, लाइक एक्सपांड होता जाता है प्रलय धीरे 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 ऊपर के लोग तक। तो कुछ प्रलय होते हैं जो स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं लेकिन स्वर्ग को नहीं करते। तो जनरली क्या होता है कि समझ लो कि हम अहमदाबाद में है, अगर कच्छ तक प्रलय आ गया, कच्छ तक, तो आप थोड़ा भयभीत तो हो ही जाएगा कि आप अहमदाबाद में रहते हो, सौराष्ट्र तक प्रलय आ गया है, तो आप भयभीत हो जाएंगे। वैसे स्वर्ग के लोग भी प्रलय के कारण भयभीत हो जाते हैं कि आज, क्योंकि पता नहीं है ना कौन सा प्रलय कब आता है, वो उनको नहीं पता, इसलिए उनको लगता है कि शायद ये हमारा ही प्रलय हो, तो वो भी डर जाते। तो इस तरह स्वर्ग का प्रलय आता है एक बार, उस तरह से ऊपर ऊपर तक ब्रह्मलोक तक जाता है, और जब ब्रह्मा का दिन खत्म हो जाता है तो ब्रह्मलोक के नीचे के सब प्रलय हो जाते हैं। तो ऐसे तो ब्रह्मा की लाइफ, और ब्रह्मा की पूरी लाइफ में ब्रह्मा जी का लोक भी प्रलय हो जाता है, उसको सबसे बड़ा प्रलय बोलते हैं, महाप्रलय।
तो मतलब ब्रह्मा की लाइफ में एक बार प्रलय आता
है उनका।
हाँ, उनका और जो उनके नीचे उनका मल्टीपल बहुत बार आता है,
क्योंकि उनकी लाइफ भी मल्टीपल टाइम है, मल्टीपल टाइम जन्म है ना उनका भी।
1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
हाँ, तो उस हिसाब से
दिन तक रहती है बकरी अपने।
और ये प्रलय जो हम देखते हैं ना इधर, ब्रह्मा जी तो बहुत ऊपर है, लेकिन हम जो प्रलय यहाँ पर देखते हैं वो प्रलय भी बहुत छोटे मोटे नहीं होते, वो पूरा आपको हिला देते हैं, भयभीत कर देते हैं, पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा समझ लो पूरी पृथ्वी पानी के अंदर चली जाती है, पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरे पूरे यहाँ पर पूरे सृष्टि पे सब जगह पर ऐसा भयानक गर्मी हो जाएगा कि सब जल के भस्म हो जाएगा, ऐसा तूफान चलेगा।
चार युग के बाद होता है,
इसे व्यवस्थित होने वाला
क्या
जैसे अभी चार
लाख चतुर्युग खत्म होता है,
चार लाख 70,000 साल के बाद
वो थोड़ा बड़ा प्रलय होता है। छोटा प्रलय हुआ था महाभारत के युद्ध में, तो महाभारत के युद्ध के समय पे 64 करोड़ लोग मरे थे, तो स्मॉल प्रलय, उसमें सब लोग प्रभावित नहीं हुए, जैसे विदुर नहीं प्रभावित हुए थे, वो दरी थे लेकिन उनको प्रभाव नहीं हुआ था उसका।
जनवरी का वो भूकंप आया था,
वो छोटा प्रलय था एक
छोटा। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सभी लोग जो अफेक्ट होते हैं वो जो उसको भी महाप्रलय, वो छोटा महाप्रलय तो वो आएगा 4,27,000 साल के बाद, राइट?
या आई मीन चतुर्युग के बाद।
मतलब अभी जो उसके बाद
चतुर्युग के बाद वो दैट इज अ बिगर प्रलय, तो क्योंकि अभी तो युग खत्म हो रहा है ना, इसलिए वो तो इतना भयानक हो जाएगा, फिर सत्युग वाला वातावरण क्रिएट करने के लिए प्रलय चाहिए ही चाहिए।
तो उसमें तो भागवत में जो बताया गया है उसके मुताबिक वो बारिश वर्षा नहीं होगी 100 साल तक, उसके उस मुताबिक होगा।
यस, अभी वो प्रोपोर्शनेटली है कि महाप्रलय का डेमोन्स्ट्रेशन इधर होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, बिकॉज वी हैव नो, एटलीस्ट मुझे ये नहीं पता कि प्रलय की मात्रा कैसी होती है, इट्स ऑल डिफरेंट। लेकिन जो श्रीमद् भागवत में तो महाप्रलय की बात हुई है कि इतने सालों तक इतना आएगा, इतने सालों तक इतना आएगा, जैसा प्रलय में ऐसा कई बार होता है, और छोटे छोटे प्रलय भी आते हैं, जैसे मायापुर धाम है, तो मायापुर धाम चैतन्य महापुरु का है, कुछ 150 या 200 साल तक गंगा के प्रलय में रहा, गंगा ने उसको पानी के अंदर डाल दिया था 100-150 साल तक। तब तक किसी को पता नहीं, पेढ़ी चेंज हो जाती है ना, जनरेशन बदल जाती है 100-150 साल का, और फिर जनरेशन चेंज होगी अब कौन बताएगा वहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ था, वो किसी को नहीं पता। फिर भगवान को भक्तिवर ठाकुर को भेजा, भक्तिवर ठाकुर ने इसको प्रस्थापित किया फिर से, लाइक द प्रलय जो है दैट कैन बी यू नो वेरी फ्रॉम एजिस टू एजिस, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। और ऐसे प्रलय तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी ये उड़ीसा में आया था, तो बांकी मोहन का मंदिर जो है ना, बांकी मोहन मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा से, आप उड़ीसा से ना, आप नहीं है सॉरी, तो उड़ीसा से जगन्नाथपुरी में एक जगह है बांकी मोहन, और बांकी मोहन कितने चतुर्युग पहले से उधर है वो जगह, बांकी मोहन कितने युगों के पहले थी वो जगह, अभी भी है बाकी मोहन करके जगह, उस सालों पहले भी इतने युगों पहले भी उसको जगह को बाकी मोहन ही बोलते थे, अभी भी बाकी मोहन बोलते। आज मैं वो उसका मैंने फोटो देखा 2 महीने पहले, बाकी मोहन का मंदिर है, एक मंदिर है उधर उस जगह पर, तो उस मंदिर इस जो अभी हुआ ना पुरी में, मंदिर की सारी दीवारें टूट गई, सारा मंदिर का एक एक दीवार सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया, अब केवल जगह बचा है, और डिटिस है, डिटिस को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी है वैसे ही, तो वो जगह पर, तो अर्थात वो प्रलय से प्रभावित नहीं होते कई स्थल, दैट इज वन ऑफ दैट प्लेसेस, अक्षयवट प्रलय से प्रभावित नहीं होता। नहीं हो सकता, नहीं है आपको, हो सकता है कि आप सत्युग में नहीं जन्म लो, आपको क्वालिफाई नहीं हो, द्वापर के लिए क्वालिफाई, तो रुक जाओ थोड़ी देर, 2 युग के बाद आपका जन्म होगा।
तो भटकते रहेंगे,
नहीं आपको देंगे ना, दूसरा कोई शरीर दे देंगे तब तक टेम्पररी, कि आप भटकते रहो, ये नरक की नरक में घूम के आओ, या फिर दूसरे किसी ब्रह्मांड में भेज देंगे, जाओ उस ब्रह्मांड में जाओ टेम्पररी। ब्रह्मांड तो अनंत कोटि है, तो आप किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हो ना, जरूर छोड़िए कि नहीं ये तो इस ब्रह्मांड का आदमी है जो इसको उधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एनी ब्रह्मांड कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसा सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था कि यहाँ पर चले तो हम जाएंगे दूसरी जगह, तो कृष्ण के जन्म के पहले हमारा जन्म हो गया, किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा हो सकता है आपको कृष्ण के जन्म के समय पे, कृष्ण के जन्म के पहले बाद में कभी भी, इट्स ऑल इमेजिनेशन। इसलिए आपका जन्म भगवान खुद डिसाइड कर देते हैं कि आपको कहाँ जन्म देना है। हाँ, अगर कोई भक्त है और सफल हो गया और उसकी भक्ति से भगवान खुश हो गए और संतुष्ट हो गए, तो उसको सीधा भगवत धाम नहीं भेज देते, उसको पहले ऐसी जगह पर भेजते जहां कृष्ण लीला कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में जहां कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो वहां पर उसका फाइनल टेस्टिंग होती है, फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन उसकी भक्ति का। और उसके बाद, और इट्स नॉट अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन, इसके साथ साथ उसको एक सुविधा भी देते हैं कि कुछ लीलाएं पृथ्वी पर ही हो सकती है, वैकुंठ में नहीं हो सकती, तो उसको आस्वाद भी करवाते हैं। और उसके बाद फिर आपको सनातन धाम मिल जाता है, पृथ्वी पर आपको एक एक मौका देते हैं हमेशा, डायरेक्टली नहीं, पहले जाओ कहां पर कृष्ण लीला हो रही है उधर भेज देंगे, इस तरह से भी कहेंगे।
तो कल की अवतार के बाद प्रलय ऐसा?
कल की खुद ही प्रलय कर लेंगे आकर के, सबको खत्म कर देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे, और फिर जो कुछ बचेगा वो फिर एक इशारा करेंगे तो प्रकृति कर देगी खत्म बाकी का बचा हुआ। तो कल की तो है, वो तो स्वयं भगवान ही है, तो खत्म करने ही आ रहे सब कुछ, अंत के अंत में आएंगे,
तो जो भगवान के हाथ से मरेंगे उनका
मुक्ति, मुक्ति उनको मुक्ति मिलेगी।
हाँ
तो ले सकते, कोई बात नहीं, वो समय आ रहा है। नहीं, वो एक्चुअली फॉर्चुनेट नहीं है, कल्कि की एक कृपा है, निष्कारण कृपा, जिसमें कोई नीच से नीच, अभी मीन्स ऐसा है कि ये इतनी हद से नीच है कि अब मुझे ही मार के इसका उद्धार करना पड़ेगा, ऐसा इस प्रकार के सबसे लास्ट जो जो हैवी वेस्टेज होता है ना, जिसको जिसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसको फिर कल्कि के हाथ भेजना पड़ता है, वो खत्म करेंगे, फिर कल्कि खत्म करेंगे। हाँ, उनका उद्धार कर देंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन तो कर तो देंगे ऐसा। वो तो अपने भगवान पे निर्भर करता है किसको करना उद्धार नहीं करना, लेकिन जो उसके हाथ मरेगा वो उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है, ये नहीं सोचना कि उस समय कल्कि सबको मार डालेंगे तो सत्य खाली हो जाएगा, वो आएगा खाली, कब सबका उद्धार हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अनंत कोटि जीव निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, तो ये सृष्टि जो है वो इस तरह से हमेशा भरा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब आजकल लोग बहुत कम देख रहे, क्यों? दूसरे लोगों में ट्रांसफर हो गए, या कब सब नरक में चले गए, या कहां चले गए, पता नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी, ये ऑलवेज भरा ही रहेगा, अनंत कोटि जीव है। इसलिए
उसका एग्जाम्पल बाली है, बाली को भगवान श्री राम ने मारा, मारने के बाद कोई जरा नाम का गधा बन के आया हो।
हाँ, वही तो भगवान अपनी अपनी लीला के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
किसको क्या करें कहाँ भेजें।
मैं हमेशा भक्तों को बताता हूँ कि सिद्धांत भगवान स्थापित करते हैं, कि ये सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत को एक व्यक्ति तोड़ सकता है, वो कर सकते हैं। इसलिए भगवान को कोई नियम नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए, देखो किताब लाओ क्या लिखा है तुमने, तुम्हारा नियम ये है, ये लो जो क्या बोलते अंतकाले जो मामे हुआ, अब मैंने तुम्हें चिंता किया, तो वो नियम तुम्हारा अपना बनाया हुआ है भगवत गीता का नियम, तो वो आप नहीं बता सकते, यू कांट डू दैट, कृष्ण को कोई नियम बांधता नहीं है।
सूरदास जी ने प्रभु जी बहुत बढ़िया भगवान जी को उलाहना देते हुए बहुत बढ़िया भजन भगवान ने कहा कि गोपाल जी आपके तो जो काम है ना, बोला धर्म तब पता नहीं किसको धर्म को अधर्म कर दो, अधर्म को अधर्म कर दो,
वो तो ऐसे ही
आपके नियम ही ऐसे है,
भगवान ऐसे ही
उन्होंने
एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं,
कई एग्जाम्पल दिए उन्होंने सब्जी की, तो कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी आपने इसको दे दिया, कोई किसी लायक नहीं था उसको एकदम आपने अपना धाम दे दिया।
यस,
तो आपका तो कोई नियम नहीं,
या दैट्स व्हाट जो इसलिए कई बार मैं खुद एस्ट्रोलॉजी को इतना विश्वास नहीं करता हूँ, एक ही रीजन है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी खराब है, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि अब ये एस्ट्रोलॉजी कितना भी कुछ भी कर ले, अब इनको तो कोई नियम लगता नहीं है, कृष्ण को तो वो तो जब चाहे नियम तोड़ देते, तो उनको क्या नियम की वैल्यू है, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल नियम जो है उसको भी क्यों हम मान के चले, कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है।
उन्होंने तो जी चार पांच एग्जांपल दिए, मैं तो लेकर एग्जांपल है, पहला एग्जांपल उन्होंने दिया कि जय और विजय ने कौन सा सा पाप किया था, वे रोका तो था उनको, सन्यासियों को, सनत कुमारों को रोक दिया था कि आपकी सेवा में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए रोक दिया उन्होंने, लेकिन आपने कह दिया उनको श्राप दिला दिया, और श्राप नहीं देते तो कोई छोटा मोटा, उसके बाद असुर योनि में डाला और फिर उनसे धर्म का नाश करवाया, ऐसे रोनी में डालने के बाद धर्म का नाश कर रहे हैं, और फिर एक जन्म नहीं वो तीन जन्मों तक लगातार,
yes.
फिर इसके बाद कहते हैं कि जो जालंधर नाम का राक्षस दैत्य था, इसकी पत्नी जो थी वृंदा जी के बारे में कहते हैं, कहते उसके वो तो सती नारी थी, उसका आपने सत्य का भी नाश करा दिया।
एक्चुअली देयरफॉर कृष्ण के लिए कोई नियम है नहीं, वो अपने नियम खुद बनाते हैं, लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं उस नियम को जब तक उनकी अपनी इच्छा नहीं है बस, बाकी अगर हम तोड़ेंगे तो फिर वो किताब लाओ, किताब में क्या लिखा है हम तोड़ेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा।
और कहते हैं कि महाराज बलि वो तो लेके कर रहे थे और काम कर रहे थे, उनको लेके करना बंद करा दिया, और बंद कराने के बाद ऊपर से पताल भेज दिया उठा के, और फिर लास्ट में कहते हैं कि देखो पांच पांडव थे, गलतियां थोड़ी की बड़ी गलतियां थी उन्होंने, अपनी पत्नी को जोर में हार जाना ये सब कर देना, लेकिन वो तो आपके बड़े प्रिय रहे, और बेचारा कर्ण जो हमेशा परिस्थिति बस हमेशा समस्याओं में जूझता रहा, वो आपसे विमुख कहा जाता है, तो लास्ट में कहते हैं कि आपकी गति आप ही जाने, कोई दूसरा भी जान सकता
है। यस, क्योंकि कृष्ण किसी भी नियम से है नहीं, और कृष्ण के पास हर एक वस्तु का आंसर है, कृष्ण को कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये नियम क्यों तोड़ा, तो बहुत सारे आंसर है उसके कृष्ण के पास, और वो एकदम लॉजिकल आंसर देते हैं, आप चुप हो जाएंगे, कृष्ण जो बता रहे बिल्कुल सही है, और जब कोई भी आंसर शेष नहीं बचेगा तब लास्ट में वो बोल सकते कि ये मेरी मर्जी है। ऑब्वियस। तो टेक्स्ट नंबर फोर थ्री टेक्स्ट नंबर थ्री
ये वरपुत्र ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्त्रोत्र है, और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है।
यहाँ पर ब्रह्म जो है सर्व योनिष कौन थे, मूर्त या संभव थी उसके पहले वाले, अहम हाँ हाँ तस्मिन गर्भ अहम योनि तस्मिन गर्भ ददाम्यहम तस्मिन गर्भ ददाम्यहम, भगवान उसको गर्भ देते हैं। ब्रह्म जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या हाँ, तो ब्रह्म जो है टोटल मटेरियल सब्सटेंस उसको भी ब्रह्म कहा जाता है, तो ब्रह्म कई चीजों को कहा जाता है, ब्रह्म ये आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान की ज्योति को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है, और ये प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, और ये कौन सा बोलते हैं इसको
है
परम तत्व श्रीमद भागवतम इज गिविंग द स्पेसिफिक वर्ड परम तत्व या परम तत्व राइट क्या बोलते हैं उसको महत्तत्व सो महत्तत्व जो है वो वास्तव में उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल मटेरियल सब्सटेंस है वो जन्म का कारण बनता है, क्योंकि वो तो जड़ पदार्थ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, रॉ मटेरियल है, तो उसका कुछ काम में नहीं आएगा वो, तो वो जड़ पदार्थ में मैं उनको जीवात्मा या चेतना रूपी गर्भ देता हूं, ऐसा भगवान यहां पर कह रहे हैं, ताकि वो जीव का जन्म होता है। तो वो कैसे देते हैं भगवान? साधारण दृष्टि से पुरुष और स्त्री के बीच में संयोग होता है तभी चेतना जाती है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करेंगे। महत्त्व भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है, तो भगवान अगर उसको गर्भ देते हैं तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसे उपलब्ध दृष्टि से अपेरेंटली तो भगवान को आना पड़ेगा संपर्क में, लेकिन भगवान संपर्क में आएंगे तो फिर उनका जो दिव्यत्व है वो नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में आ गए, तो फिर उनका दिव्यत्व कैसे रहेगा? इसलिए भगवान स्वयं इसको गर्भधारण नहीं देते, तो स्वयं नहीं करते ये कार्य, इसलिए फिर वो अपने अंश को लगा देते हैं इसके अंदर, वो रुद्र के माध्यम से ये कार्य करते हैं, केवल दृष्टिपात करते हैं। ऐश्य दृष्टि से भगवान को स्पर्श भी नहीं करना है, प्रकृति जो है उसको दृष्टिपात करने से वो गर्भ धारण करती है, अर्थात जीव उसको प्राप्त होता है। लेकिन कोई कहेगा कि फिर दृष्टि भी तो कनेक्शन ही हुआ ना, आंखों से देख रहा वो तो कनेक्शन ही हुआ, इसलिए फिर हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो दृष्टि है ना, दैट बिकम्स रुद्र, वो शिव जी, वो शिव जी के रूप में जाकर के उस प्रकृति को गर्भ देते हैं, और इसके कारण आप जो शिवलिंग और योनि देते हो ना, तो मैं तो जब बचपन में इतनी बार शिवलिंग को दर्शन करने गया तब समझ ही नहीं पा रहा था बार बार कि ये कैसा शेप है भगवान की, ये मूर्ति कैसी है, ऐसा कोई काला पत्थर है, इसको क्यों लोग पूजा करते? ठीक है शिव जी अपराध नहीं करना चाहिए, माथा नमा दो दर से वो हम करते, लेकिन कोई डिटेल नहीं पता था। थोड़ा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद देखा कि इसके आसपास में इस प्रकार का शेप क्यों है, गोल ऐसे इस प्रकार का ओवल शेप क्यों है, तो वो नहीं पता था। बाद में सोचा शायद वो पानी डालते हैं ना लोग, तो पानी निकलने का रास्ता बनाया होगा, तो पानी निकलने के लिए सब होता है। आई मीन आई नो आइडिया अबाउट इट, पता ही नहीं था, लेकिन जब भगवत गीता पढ़े उसके बाद पता पड़ा कि ये प्रकृति और भगवान के द्वारा जो सृष्टि की जाती है उसका ये प्रतीक है। यहाँ पर जो आपको योनि दिख रही है वो शिवलिंग के आसपास वो प्रकृति है, और उसके बीच में जो लिंग है शिवलिंग वो रुद्र है शिव जी, और वो भगवान का दृष्टि है, आंखों के द्वारा दी गई दृष्टि है। इस तरह से ये प्रकृति गर्भधारण करती है। प्रकृति में जीव तब आते हैं जब भगवान उसको गर्भाधान देते हैं, इस तरह से भगवान बताते हैं तो आई एम मेकिंग पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, मैं इन लोग को इस तरह से मैं गर्भ देता हूं। हाँ, फिर चौथा वो आपका KMV पढ़िए।
हे पुत्रीपुत्र, तुम्हें समस्त लोक के समस्त प्रकार की जीव योनियां जिस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं।
अर्थात जितनी भी योनि है, ऐसा नहीं कि मनुष्य का पिता है, जितनी भी गाय गधे कुत्ते बिल्ली सबका सर्व योनिष कौन थे, मूर्धा संभवंती है, उन सबका अहम बीज प्रदा पिता, उन सबका मैं ही एकमात्र पिता हूँ, शिव की दिन फादर, अर्थात मैं परम पिता हूँ सबका, सबका बीज देने वाला पिता मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। तो पिता शब्द का अर्थ ये भी होता है कि पिता के रूप में भगवान पालन भी करते हैं, जब बीज देने वाला, अर्थात भगवान सीड गिवर है, भगवान के सिवा प्रकृति कुछ नहीं कर सकती और भगवान के जीवा सिवाय जीव का जन्म नहीं हो सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द पर्पल इज दैट द मटेरियल वर्ल्ड इज इम्प्रेग्नेंटेड विद लिविंग एंटिटीज हु कम आउट इन वेरियस फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स, जो भी हमने चर्चा की ना, अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स, पूर्व समय में जो कर्म किए हैं उस आधार पर सर्जन के समय पे नए नए शरीर उनको दी जाए, और आपका हिसाब किताब चेक करेंगे कि हाँ आपको कौन सा शरीर मिलना चाहिए था, हाँ आपको ये शरीर मिलना चाहिए था, आपकी हाइट कितनी होगी इतनी होगी, आपका नेचर कैसा होगा ऐसा होगा, आपका रंग कैसा होगा ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू आपके कर्म, वो आपके कर्म के आधार से आपको देंगे। और अगर 13वें अध्याय के साथ इसको कनेक्ट करोगे तो क्या देखा जाएगा कि आपने आपके खेत में क्या बोया था वो देखेंगे, तो वो जो बोया है उसी के आधार पर आपको प्लांट होगा, नया प्लांट उसी के आधार से खुलेगा, और वो खुलेगा, फिर आप कह नहीं सकते ऐसा थोड़ी चलता है मेरे साथ ऐसा नहीं। और तुमने जो बीए के बीच के आधार से वो तो देखो, तो उसी के कर्म के आधार से हमें नया शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए वो प्रकृति मनुष्य जो है वो यस जीवात्मा जो है वो इसमें इस तरह से दूसरा शरीर तो प्राप्त करता है। अभी कृष्ण आत्मा को बद्ध होने के विषय में बताते हैं। पहले सबका अल्टीमेट पिता के रूप में अपने आप को बताते हैं, देखो मैं सबका पिता हूं और ये प्रकृति किस तरह से गर्भ देती है। तो प्रकृति की बात हो गई, अपनी बात हो गई, और अभी आत्मा की बात करेंगे, आत्मा इसमें किस तरह से फंसता है, तो वो चीज की बात अभी भगवान करेंगे। सो वी कैन गो अहेड, टेक्स्ट नंबर 5।
भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बच जाता है।
हाँ, अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया भगवान ने कि उसका जो प्लेसमेंट होती है आत्मा की वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होती है। मटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स। When the eternal living energy comes in contact with nature, संपर्क में आता है तो वो बद्ध हो जाता है। जैसे संपर्क में आता है वो बद्ध हो जाता है, अर्थात यद्यपि उसकी अपनी इच्छा तो है स्वतंत्र होकर के भोग करने की, लेकिन जैसे वो इच्छा प्रकट होती है ना तो तुरंत प्रकृति के 3 गुणों का एक कवरिंग आ जाता है उसके ऊपर, तुरंत प्रकृति के 3 गुण वहां पर आ जाते हैं। यद्यपि उसका जो फॉल्ट है वो प्रकृति के 3 गुण अपने आप से नहीं आए हैं, वो प्रकृति के 3 गुण का जो प्रभाव है मुझ पर वो अपने आप से नहीं आए, वो लोग अपने आप से नहीं, कैसे क्यों आए हैं, क्योंकि स्वतंत्र भोग करने की मेरी इच्छा से आकर्षित होकर के वो लोग आए अपना प्रभाव मुझ पर जमाने के लिए। तो स्वतंत्र भोग करने की जो मेरी इच्छा है इसलिए मैं प्रकृति के 3 गुणों के अंदर, इसलिए मैं इसके लिए मैं कृष्ण को ब्लेम नहीं कर सकता। कृष्ण को जैसे कोई व्यक्ति जज अगर मुझे जेल हो गई तो मैं जज को ब्लेम कर सकता हूँ कि जज के कारण ब्लेम हो गई जेल हुई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि जज का कोई इच्छा नहीं था कि मुझे जेल भेजा जाए, लेकिन फिर मैंने अपने ही कर्म ऐसे थे, मैंने खुद ये विचार किया कि मैं जेल में जाना चाहता हूँ, तो मेरे कर्म के कारण मुझे जेल में जाना पड़ा। इसी तरह से इसको प्रिजन हाउस भी बोला जाता है, ये संसार जो है प्रिजन हाउस जैसा है, और ये 3 गुण जो है वो रस्सियां जैसे है, वो मुझे बांध देते हैं, और इसका और गुना भी होता है, जेल होता है तो गुना भी तो होगा तभी जेल होगी, और गुना क्या है, भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने की इच्छा, ये गुना है मेरा, और इसके कारण हमारा जेल होता है। हमारी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस होती है, तुच्छ स्वतंत्रता, उसका दुरुपयोग, आज सुबह इस विषय में भी चर्चा हो रही थी किसी के साथ, तो एक भक्त इस बात को स्वीकार करने में उसको बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि ये हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक कोई क्या बोलते हैं उसको फिक्सिंग गेम नहीं है, वो फिक्स गेम नहीं है, ऐसे लाइफ पूरा एकदम फिक्स है, पूरा क्या बोलते हैं उसको एकदम प्लान्ड है, एकदम फिक्स,
कुछ फिक्स पहले से है।
हम इसके साथ मेरे साथ आगे ऐसा ही होगा, इसके बाद फिर वो ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो फिर मैं वहां पर प्रसाद शुरू होने वाला था 1 बजे रात, खत्म हो गया सेशन, तो फिर मैंने उनको कहा कि बाहर एकादशी का प्रसाद परोसा जा रहा है, अब आप चाहो तो एकादशी का प्रसाद खा सकते हो, अगर आप चाहो तो वहां पर गोविंददास में जाकर द्वादशी का प्रसाद भी खा सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या खाना है। लेकिन क्या पहले से ये ऐसा तय नहीं किया कि मैं क्या निर्भय करूंगा, समझ लो कि मैं द्वादशी खाना चाहता हूँ, तो ये भी पहले से ही निर्धारित है कि मैं ऐसी ही इच्छा करूंगा, तो फिर मैंने उनको कहा कि आपकी अपनी स्वतंत्रता का क्या महत्व, फिर आप चाहो तो क्लास में बैठ सकते हो, नहीं चाहो तो खड़े होकर चले जा सकते हो। कुछ लोग होते ऐसे, एक दूसरा एक भक्त मुझे मिला था 2 महीने पहले, बोले वो क्या बता रहे थे, बोले ये ग्रह का प्रभाव आता है ना इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, वो ग्रह का प्रभाव आता है इसलिए ऐसा करता हूँ। मैंने कहा ये लो मेरी कुंडली, इस कुंडली में जो लिखा है ना उसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, तो तुम एक्सपर्ट हो तो इसको पढ़ के दिखाओ, ये मेरी कुंडली कुछ नहीं होना, तो इसलिए ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ हमारी अपनी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। जो माइन्यूट इंडिपेंडेंट जो हमारे साथ हमारे पास है, इन अदर वर्ड्स आउट ऑफ एनमिटी टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण के साथ शत्रुता का व्यवहार, भगवान के साथ जो शत्रुता का व्यवहार है उसी के कारण उनकी सेवा की जो अवस्था है, उनकी सेवा करने की जो स्थिति है, उसको त्याग कर दिया, नहीं करनी तुम्हारी सेवा। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा है, ऐसा मैं भला कैसे कर सकता हूँ, अरे भाई मैंने किया इसलिए तो मैं इधर आया हूँ, मैं इस संसार में इसलिए तो आया हूँ कि मैं सेवा नहीं करना चाहता हूँ कृष्ण की, और कृष्ण के साथ शत्रुता की मैंने, अरे वो उसके साथ कैसे शत्रुता कर, इतने इतने सुंदर है और इतने अच्छे मित्र है और वो कितना प्रेम करते अपने भक्तों को, इतने भक्त वत्सल है, कितने कृपालु है, भला उनसे भला कौन मित्रता शत्रुता करेगा, मैंने किया था इसलिए मैं इधर आया, मैंने ही शत्रुता की थी उनके साथ इसलिए मैं इधर आ गया। और यही प्रॉब्लम है, therefore we have to come, हमें वो इसके कारण हम ये इल्यूजन में फंस गए हैं, संसार में फंस गए, और ये सच बात है, मोह अभी भी हमारी इल्यूजन के कारण हमें मोह हो जाता है, मोह होता है क्योंकि जो सही नहीं है उसको हम सही मानते हैं, जहां पर सुख नहीं है उधर हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो वही तो बात हुई, तो माया के प्रभाव में हमें है अभी भी, वो प्रकृति के 3 गुण अभी भी हम पर कार्य कर रहे हैं। सो सारे जीव अपनी इच्छा से अगर कृष्ण का त्याग कर रहे हैं, किसी भी इच्छा से किसी तरह से जो भी जीव, तो वो व्यक्ति एक रूप से तो निरंतर कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसका दुरुपयोग करते हैं, और जैसे दुरुपयोग किया तुरंत उनके पास अहंकार नाम का एक कवरिंग लग जाता है उसको, और ये अहंकार का अर्थ क्या होता है, फॉल्स आइडेंटिटी। जैसे समझ लो कि आप इस बिल्डिंग में हो और ये मंदिर है आपका वैकुंठ धाम फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको प्रिविलॉन में जाना है, नाम क्या वही है ना, हाँ, लेकिन वहां पर एंट्री पास है, तो एंट्री पास क्या है, एंट्री पास है कि आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी, मिथ्या पहचान लेनी पड़ेगी अपनी, तभी आप उसको प्रवेश कर सकते हो, और वो मिथ्या पहचान कैसे आती है, अहंकार से, और वो अहंकार क्या है, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं भोगता हूं, मैं स्वतंत्र रूप से भोग करूंगा, ये सब विचार करने वाले को अच्छा, तो उसको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है मिथ्या वाला, देन ही कैन एंटर इन मटेरियल वर्ल्ड, फिर वो प्रिविलॉन में घुस सकता है, फिर वो भौतिक प्रकृति में उसका पतन हो सकता है, तब तक उसका पतन नहीं हो सकता। लेकिन ये क्यों होता है, वो क्यों उधर गया प्रिविलॉन, क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, और जैसे जो आपको यहां आने से पहले आपको फॉल्स आइडेंटिटी एज्यूम करनी पड़ती है भौतिक संसार में, जैसे आपकी वास्तविक चेतना है उसका परवर्टेड प्रतिबिंब आ जाता है पदार्थ के साथ अपने आप का पहचान, आप अपने आप को शरीर मानने लगते हो, दैट इज फॉल्स आइडेंटिटी, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं गधा हूं, मैं कुत्ता हूं, ये फॉल्स आइडेंटिटी है, तो ये आप स्वीकार कर लेते हो और तुरंत वो भौतिक प्रकृति के द्वारा बंद हो जाता है। एक्चुअली दिस इज ये हमारा भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक हमारी जो आइडेंटिटी है पहचान उसके बीच का ये जंक्चर है मटेरियल फॉल्स ईगो, ये फॉल्स ईगो इज द मेन थिंग, ये फॉल्स ईगो के कारण ही फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है, और इसके कारण हम अब हमारा असली स्वरूप है उसको भूल करके टेम्पररी मटेरियल पहचान को एज्यूम कर रहे थे। यस,
इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े और ये जो दासत्व की प्रक्रिया है उसमें हम प्रगति करते रहे, हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहे, तो उस फील्ड में हमारी भगवान सुन के हमको ऐसे फैसिलिटी देते रहेंगे, मतलब हमको वो मटेरियल वर्ल्ड में जाने से हर वक्त बचाते रहेंगे।
बचाते रहेंगे नहीं, बचाते रहते हैं अभी भी, लेकिन हमारा ईगो जो है भौतिक संसार का जो फॉल्स ईगो जो है, वो ईगो जब तक थोड़ा लेश मात्र भी 0.0001 भी बचेगा ना, तब तक वो आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी आपके पास, वो कार्ड रहेगा आपके पास। जब तक वो कार्ड आप यहाँ छोड़ नहीं देते आइडेंटिटी का, फॉल्स आइडेंटिटी का, वो कार्ड छोड़ नहीं देते तब तक आपको उधर का वीजा नहीं मिलेगा भाई, गुणधाम का, आपको उधर जाना नहीं देंगे उधर, क्योंकि आप अभी भी उस आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हो। इस संसार में अपने आप की पहचान कराना या स्वतंत्र भोक्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना और भगवान के दास, 99% हो दास, लेकिन 1% जो आपका बच गया है, वो 1% जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको भगवान के धाम में वापिस नहीं लिया जाएगा।
बैलेंस जीरो होना चाहिए
जी, बैलेंस पूरा जीरो करना पड़ेगा फॉल्स ईगो का।
शत्रुता
से हो सकता है, शत्रुता भी एक हिस्सा होगा, वही एक ही बात है, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना,
प्रतिस्पर्धा भी, भगवान मालिक है, हम भी मालिक
हैं।
तो जैसे अहंकार जो सूक्ष्म शरीर का एक तीन में से एक है मन बुद्धि अहंकार, तो वो सबसे पहले कवरिंग, जैसे आपने बताया वो वर्ड कवरिंग आवरण, सबसे पहले वो बनता है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा स्थूल, उससे ज्यादा स्थूल, ये प्रोसेस है।
यस, तो पहले तो फॉल्स ईगो ही आता है सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों का आधार अहंकार है, दोनों का आधार वो अहंकार है, और इसके आधार पर ये जनरेट होते हैं, और इस शरीरों के अभाव, शरीरों के आधार पर हम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोड्स, प्रकृति के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, मीन्स अगर आपके लेबोरेटरी में आरजीबी के तीन कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर है राइट, अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हो तो एक दो ड्रॉप रेड के, एक ड्रॉप ब्लू का, तीन ड्रॉप ग्रीन का, तो उससे जो कलर बनेगा वो कलर का फॉल्स ईगो हमने एज्यूम किया है, अर्थात वो इच्छा हमने प्रस्तुत की है, तो इसके आधार पर आपको शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे तो तीन गुणों में से किसी एक का प्राधान्य होगा, तीन गुणों का कॉम्बिनेशन, उसके आधार पर हमें शरीर दिया गया, यू एक्सेप्ट दैट बॉडी, इस तरह से। तो स्वाभाविक रूप से हम इसके अंदर बद्ध हो जाते हैं, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से इसका शोषण करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद है, भगवान के सनातन अंश है, लेकिन हम भौतिक वातावरण से आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए बद्ध हो जाते हैं, एल्यूरमेंट, वो उसमें बद्ध जैसे होता है ना, फंस जाते हैं। जैसे कैसा होता है कि अगर हाथी को पकड़ना है तो उसको, उसके पहले फीमेल जो हाथी होती है, यू नो स्त्री, तो उसको पहले दौड़ाया जाता है, फिर वो दौड़ता है, वो उसके पीछे 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 दौड़ता है, और जैसे वो दौड़ता है फिर आगे एक खड्डा बना दिया गया होता है, और वो खड्डे के अंदर पूरा हाथी समा जाए, इतना बड़ा खड्डा होता है, तो वो उधर जाता है, लेकिन वो फिर फंस जाता है, वो सीधा गिर जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से ये एल्यूरमेंट क्रिएट करते हैं हमारे अहंकार के वश तीन गुण, और फिर हम उसके अंदर आकर के फंस जाते हैं, और फिर प्रकृति के तीन गुण आपको पूरा दास बना करके, स्लेव बना करके काम करते, आपको कोई दया व्या नहीं छोड़ते, तमोगुण के जो अगर हो गया उसका अधिकार, तो आपको तमोगुण के अंदर काम करवाते, आपको दास बनाकर छोड़ देते। यस,
तो ये भगवान इतने आकर्षक है, इतने सुंदर है, और भगवान की शक्ति जो है वो शक्ति भी इतनी आकर्षित होती है, तब भी 95% लोग भगवान की शक्ति से ही आकर्षित रहते हैं, उन्हीं की शक्ति से ही मोहित रहते हैं, जितने भगवान से आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसा बनाने का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि इजीली सब लोग भगवान की शक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ भी हो अगर किसी को मंदिर आने का बोलेंगे तो लेकिन वो क्लब में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, मॉल में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, सिनेमा में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर कोई गार्डन है या फिर कोई कोई भी अच्छी जगह है वहां जाना ज्यादा पसंद करेंगे। वृंदावन आने की बात करेंगे तो वो बोलेंगे हम तो गोवा में सुटेबल है या फिर फॉरेन में। तो भगवान का जो शक्ति है, जो एक तरफ से माया है, फिर भी उसी की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते जितना भगवान की तरफ वो नहीं होते। 95% ऐसा ही है और बाकी का 5% में भी प्योरिटी देखने जाए तो 2% हो जाएगी, बाकी के 3% भी मिक्सिंग वाले होंगे कि वो भी बोलेगे भाई मैं 100% प्योर नहीं हूँ, वो दूसरे का ही बोलेगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा कितना ऐसा इजी क्यों नहीं है कि भगवान ही सबसे बेस्ट है, ऐसा सबके अंदर ये बिलीव बन जाए, ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर वैसा करने जाएंगे तो जीवात्माओं की जो माइन्यूट जो स्वतंत्रता है वो चली जाएगी।
नहीं, उसमें जबरदस्ती नहीं करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु जी, जबरदस्ती नहीं करनी है कि ये मैं सुंदर हूँ, ऐसा नहीं। जैसे उन्होंने अपनी शक्ति में अट्रैक्शन रखा है, सब लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी शक्ति से बचना पड़ता है, राइट, कंट्रोल करना पड़ता है और अपने आप को भगवान के अंदर जोड़ना पड़ता है, ये कोशिश करनी पड़ती है। वहां तो बिना कोशिश इजीली सब लोग बह जाते हैं, तो ऐसा क्यों रखा है?
ऐसा रखा नहीं है, एक्चुअली भगवान ने तो इसकी व्यवस्था करके दी है, ऐसा रखा नहीं है, लेकिन हम लोग रोगी है और रोगी अवस्था में हमें वहां पर झुकाव अधिक है, इसका समस्या भगवान का नहीं है। अगर समझ लो कि एक मल में से कीड़े को बाहर निकालने का एग्जाम्पल, तो वापिस अंदर चला गया, इसको उसके लिए भगवान क्या करे? को कीड़ा अंदर चला गया तो इस चुनाव कीड़े का है ना कि उसको मल में जाना है, तो उसमें भगवान क्या कर सकते? भगवान उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पास उससे अच्छा मल है, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सभी प्रकार की मलिनताओं से मुक्त है। तो इसलिए पानी जो होता है उसको नीचे की ओर बहना आसान है, वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो उसके प्रयास करना पड़ता है, शुद्ध होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो गंदा होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप, हमारी वृत्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो कोई भी चीज नीचे गिरेगी ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह से हमारा अगर रोग से मुक्त होना है तो दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन रोगी होने के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ती, लाइक दैट। सो वी इजीली प्रोन टू बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और ये तो हम तो इतने जन्मों के पुराने रोगी है, तो हमारा तो गोवा ही अच्छा लगेगा ना, हमें वृंदावन कैसे अच्छा लगेगा, इतने जन्मों के पुराने रोगी है तो। लेकिन कोई डॉक्टर आता है वो बताता है कि ये तुम्हारा रोग है, तब जाकर हम ठीक हो पाते। इसलिए भगवान ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया है कि आप इसमें अंदर फंसे रहो, भगवान तो ऐसे चाहते ही नहीं है, इसलिए तो इंटरनेशनल सोसाइटी बनवाई भगवान ने कि इसको हम बनाओ और इसके अंदर भक्त लोग सीखेंगे तो ताकि वो ठीक हो पाएंगे। या सो ओके, सो हर एक व्यक्ति को प्रेजेंट सेंटेंस मिल गया है हमारे मेरे जैसे वो, और हम सभी प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बद्ध हो गए हैं। प्रकृति के तीन गुण जो है उसके माध्यम से हम बद्ध गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम को, तब तक हम यहाँ पर ही पड़े रहेंगे। So it is 5:47. What do you suggest? I can stop. It's already lecture start. हो गया क्या?
अरे पास में जो कुछ
है ना। अरे It will start in some time. What do you suggest?
Religion.
हाँ? Religion. नहीं यार, as you say. We can stop.
अगले
वाले तो सिक्स सेवन एट कंटिन्यू सिक्स में सत्वगुण
है, सात में रजोगुण है, मानने वाला जो है उससे कनेक्टेड है। जैसे प्रभुपाद वाज़ अ प्योर डिवोटी एंड ही वाज़ सेंट फ्रॉम द फ्यूचर वर्ल्ड, भगवान ने भेजा था, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि वो नित्य सिद्ध कैटेगरी में थे। मगर जो जो उनके डिसाइपल्स थे वो पहले तो मॉरल एंड जस्ट मटेरियलिस्ट, और फिर ऑफकोर्स श्री भक्ति कृपा से और मतलब फिर वो फिर हो गए। तो क्या ये कहना उचित है कि वो सब साधना सिद्ध है या कृपा सिद्ध है या
मिक्स है? कुछ साधना सिद्ध है, कुछ कृपा सिद्ध है,
नित्य सिद्ध प्रभुपाद है,
कुछ नित्य सिद्ध भी हो सकते हैं।
और वो मतलब जब तक जैसे वो प्रभुपाद की लीला मतलब वो
सहाय करने के लिए
ऐसे
प्रॉपर लेकर जनरली इस बात को उसको हाइड करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको इस संस्था को 10,000 साल चलाना हो तो इस बात को महत्व देने से इसका डाइल्यूट हो जाता है मैसेज। तो इसलिए और इस प्रकार का जो विषय होता है उसको रियलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद का असली शास्त्र स्वरूप है और उनके साथ कौन पार्षद उनके लिए सेवा करने के लिए आए हैं तो वो आप समझ तो सकते हो। You can understand by the mercy of the spiritual master. That is possible. But still, even though एक ऐसा भी प्रमाण है, जैसे अगर समझ लो कि आप for example आप भगवान के पार्षद हो और कृष्णा की लीला सहाय करने के लिए आप यहाँ आए हो, लेकिन क्योंकि आप भगवान के द्वारा निमित्त बना करके इधर लाए गए हो इसलिए आप इस विषय को भूल जाओगे कि आप पार्षद हो। जब भी आप पार्षद हो लेकिन योग माया का कारण आप भूल जाओगे कि आप पार्षद हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कई बार चैतन्य महाप्रभु के जो लीला में थे उन लोग को भी नहीं पता था कि वो पूर्व जन्म में कौन थे, जैसे मुरारी गुप्ता। तो महाप्रभु खुद बताया कि तुम हनुमान थे पूर्व जन्म में, हालांकि उनकी भक्ति वक्ति सब कुछ बिल्कुल वही थी, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट आई वॉज इन द पास्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ योग माया। So we can stop now. Or more questions? Okay.